पृष्ठ संख्या 66। भौतिक समस्याओं को और अधिक जटिल बनाने के लिए प्राकृतिक विपदाएं आ खड़ी हुई। 1840 ईस्वी और 1850 ईस्वी के दशकों में कई प्राकृतिक प्रकोप हुए। 1847 ईस्वी में हुनान प्रांत में भीषण सूखा और यांगतन नदी में बाढ़ आ जाने से हुपेई, आनहुई, चियांगशु और चरचियांग नामक प्रांतों में खेत नष्ट हो गए। 1849 ईस्वी में कुआंगशी में सूखा और 1852 ईस्वी में शानतुंग में हुआंग नदी के मार्ग बदलने से कई क्षेत्र बाद में डूब गए थे। सरकारी सहायता जनता तक पहुंचने से पहले ही अधिकारियों की जेबों में चली जाती थी। इन विषम परिस्थितियों में जनता के पास विद्रोह के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। दक्षिण चीन में आर्थिक कठिनाइयां और अधिक जटिल हो गई, क्योंकि मूलभूत निवासियों हान और मेहमान निवासियों हक्का के बीच सामाजिक संघर्ष शुरू हो गया। हक्का मध्य एशिया के निवासी थे जिन्होंने बर्बर हमलों से बचने के लिए कुआंगतुग और कुआंगशी प्रांतों में शरण ले ली थी। सामाजिक संघर्ष शुरू हो गया। सामाजिक रूप से वे बाह्य गुट के थे जिनकी भाषा, रहन-सहन और जीवन पद्धति काफ़ी अलग थी। वह मूलभूत निवासियों के साथ मिलजुल नहीं पाए थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक संघर्ष का एक और कारण बना जब कई हक्का लोगों ने हुंग शियो छियुअन के नेतृत्व में ईसाई धर्म को अपनाया, जबकि चीन के अन्य लोग प्रेतों, आत्माओं और मूर्ति पूजा में लीन थे। हक्का लोगों ने मूलभूत निवासियों के अंधविश्वासों की आलोचना की जो स्वयं उनके द्वारा विदेशी धर्म को अपनाने के विरुद्ध थे, लेकिन हुंग ने जिस ईसाई धर्म को अपनाया था उसमें काफ़ी चीनी तत्व शामिल थे। हक्का लोग स्वतंत्र, साहसी और किसी भी विरोध का सामना करने को तैयार रहते थे, परंतु अन्य लोग ऐसे नहीं थे। हक्का ज़्यादातर छोटे खेतों, कोयला खानों और खनन में जुड़े हुए थे, जहाँ पर क्रांतिकारी नेताओं और उनकी विचारधाराओं का प्रभाव अधिक था। इसलिए उन्होंने थाइपिंग आंदोलन को समर्थन दिया। पृष्ठ संख्या 67। कुछ विद्वानों ने इस आंदोलन की उत्पत्ति को वंशानुगत चक्र परिकल्पना डायनेस्टिक साइकिल थ्योरी के आधार पर समझने का प्रयत्न किया है। इस सिद्धांत में जब शासकीय वंश की राजनीतिक शक्ति का पतन हो जाता है तब उसका शासन करने का दिव्य अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के बाद अस्थिर राजनीतिक दौर आता है। चीन के लोगों का विश्वास था कि प्रत्येक 30 वर्षों के बाद छोटे विद्रोह और 100 वर्षों के बाद भीषण विद्रोह की शुरुआत होती है। प्रत्येक वस्तु जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अंत भी अटल है और यही चक्रव्यूह कहलाता है, जो बड़ा या छोटा भी हो सकता है। बड़े और छोटे विद्रोह की चरम सीमा ही परिवर्तन और पतन का प्रतीक थी। लगभग 150 वर्षों तक खांगशी, युंगचंग और छियनलुंग शासकों के युग में चीन में शांति और संपन्नता का वातावरण बना रहा, लेकिन अब एक बड़े विद्रोह की आशंका हो रही थी। सयोतंग के अनुसार थाइपिंग विद्रोह उस क्रमबद्ध पतन से उत्पन्न हुआ जो समय समय पर चीन के इतिहास में होता था। टैपिंग रिबेलियन डेवलप्ड फ्रॉम साइक्लिक डिक्लाइन विच पीरियोडिकली अकर्ड इन चाइनीज हिस्ट्री। जॉन किंग फेयरबैंक के अनुसार चीन में एक सी दशा में बिना किसी भौगोलिक परिवर्तन के एक वंश की जगह दूसरे वंश ने ली। शासन करने के दिव्य अधिकार का अंत राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक शोषण और सामाजिक असंतोष के कारण होता था। थानचुंग के अनुसार ऊपर दिए गए सिद्धांत पश्चिमी बौद्धिक मानसिकता को व्यक्त करते हैं, जिनके अनुसार चीन में बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक परिवर्तन के क्रांति या विद्रोह आरंभ हो जाता था। प्रत्येक वंश के पतन के पीछे कोई न कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण अवश्य कार्यरत होते थे। चीन के इतिहास में लगातार परिवर्तन की गति बनी रही, यह अपरिवर्तनशील समाज नहीं था। उदाहरण के लिए थाइपिंग आंदोलन के समय संधि बंदरगाह प्रणाली और विदेशियों का आना महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस आंदोलन के मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में पाए जा सकते हैं, जो कि वित्तीय संकट, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासकीय कमजोरियों, सैन्य शक्ति में कमी, बौद्धिक ह्रास, विदेशी और देसी तत्वों के बीच सामाजिक संघर्ष और प्राकृतिक विपदाओं के रूप में उपस्थित थे। पृष्ठ संख्या 68। विचारधारा, आइडियोलॉजी। तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि थाइपिंग आंदोलन केवल कृषकों का विद्रोह नहीं था। अपने उग्र विचारधाराओं के कारण यह चीन में पहले होने वाले विद्रोहों से काफी अलग था। इसके अलावा इसने राजनीतिक ढांचे के साथ साथ सामाजिक संगठन में परिवर्तन लाकर सामाजिक समता को विकसित करने की जो चेष्टा की थी, वह अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। थाइपिंग आंदोलन को समझने के लिए उसकी विचारधारा और कार्यक्रम को जानना आवश्यक है। शिये शिंगयाओ के अनुसार थाइपिंग की राजनीतिक व सामाजिक प्रणाली को तीन स्रोतों के आधार पर जाना जा सकता है। पहला, उनके भूमि विभाजन तथा राजनीतिक व सैन्य संगठन का आधार कन्फ्यूशियस ग्रंथ चोउ ली के विचारों को बनाया गया था। दूसरा, उनकी धार्मिक और सामाजिक नीतियाँ पुरानी और नई टोस्टामेंट पर आधारित थी। उनके ज़्यादातर कार्य और व्यवहार चीन की गुप्त संस्थाओं से प्रभावित थे। धार्मिक दृष्टिकोण, रिलीजियस एस्पेक्ट। थाइपिंग आंदोलन को बांधने वाला मुख्य माध्यम उसकी धार्मिक विचारधारा थी, जिसकी प्रकृति क्रांतिकारी और परम धर्म सेवी थी। पॉल कुहन के अनुसार इस आंदोलन में ईसाई धर्म की भूमिका संदेहजनक प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न केवल ईसाई धर्म की अधिकतर शिक्षाओं का पालन नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें बहुत अधिक परिवर्तित और कुरूप ढंग से अपनाया गया था। विनसेंट सी भी इस कथन से सहमत है। उनके अनुसार थाइपिंग ने परंपरागत चीन के जीवन से जुदा होने की कोशिश की। थाइपिंग उग्रवादियों द्वारा जिस ईसाई धर्म का पालन किया गया, वह परंपरा के रंग में रंगा हुआ था। द थाइपिंग अटेम्प्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ चाइनीज लाइफ। द क्रिश्चियनिटी एज प्रैक्टिसाइज बाई द थाइपिंग रिबेल्स वॉज इंक्रीजिंगली टेंटेड बाई द कलर्ड ग्लासेस ऑफ ट्रेडिशन। शीह का यहाँ तक मानना है कि यह अशिष्ट ईसाई धर्म यानी वुलगर क्रिश्चियनिटी था। सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल एस्पेक्ट। थाइपिंग आंदोलन के मुख्य सामाजिक विचार निम्नलिखित थे: लोगों में समानता, स्त्री और पुरुष के बीच समानता तथा सभी स्त्रियों और पुरुषों के बीच भाईचारे और बहनचारे की भावना का विकास करना। थाइपिंग विचारधारा का सामाजिक स्वरूप धार्मिक विश्वासों पर आधारित था। एकेश्वरवाद की नीतियों में विश्वास करने से ही इसके समर्थक सार्वभौमिक भाईचारे और स्त्री तथा पुरुष की समानता पर जोर देते थे। इसलिए इनका आर्थिक दर्शन शास्त्र सामंतवाद पर आधारित था। थाइपिंग के एक दस्तावेज दिव्य वंश की भूमि प्रणाली, द लैंड सिस्टम ऑफ द हिवेनली डायनेस्टी में यह लिखा है कि साम्राज्य की संपूर्ण भूमि पर सभी लोग मिलकर खेती करेंगे। ऑल लैंड इन द एम्पायर मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय द पीपल एज ए कॉमन कंसर्न। केवल भूमि को ही नहीं, बल्कि वस्त्र, पहनावा, मुद्रा और सभी चल संपत्ति को भी आपस में बराबर बांटना पड़ता था। व्यवहारिक तौर पर इसका अर्थ था सभी पर राज्य का नियंत्रण, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की देन थी। जैसा कि विंसेंट सिह ने संकेत दिया है, समानता की नीति के आधार पर ही थाइपिंगों ने उन सभी हीन या बाह्य लोगों को सरकारी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी, जैसे वेश्याओं व कलाकारों को, जिन्हें पहले यह अवसर प्रदान नहीं किया जाता था। थाइपिंगों में स्त्रियों की स्वतंत्रता का प्रश्न महत्वपूर्ण और असामान्य घटना मानी जाती थी, क्योंकि इसके समर्थक पैर बांधने, बहुविवाह, वेश्यावृत्ति और अन्य ऐसे विषयों को गलत मानते थे जो स्त्री तथा पुरुष के बीच असमानताओं को विकसित करते थे और उन्हें आश्रित बनाते थे। स्त्रियों की दशा में सुधार करने की चेष्टा में थाइपिंगों ने स्त्रियों की सेना तक खड़ी कर दी थी। स्त्रियों को थाइपिंग परीक्षा में भी बैठने का अधिकार दिया गया। उन्हें पुरुषों के बराबर के सरकारी पद भी दिए गए। कभी कभी उन्हें युद्ध में हिस्सा भी दिया जाता था। लिंग भेद को समाप्त करके, पारिवारिक इकाई को भंग करके और एक नई सामाजिक क्रांति को जागृत करके चीन की पुरातन परंपराओं और रीतियों को बदलने का प्रयत्न भी थाइपिंग आंदोलन ने किया था। विंसेंट सीह के शब्दों में, थाइपिंग ने सामाजिक आदर्श बंधुता की भावना पर आधारित थे। थाइपिंग समाज एक प्रकार का भाईचारा था जिसके सदस्यों ने भाईचारे की शपथ ही नहीं ली थी, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी वे सगे भाई माने जाते थे, क्योंकि ईश्वर उन सभी का पिता था। द थाइपिंग सोशल आइडियल्स वेयर बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड। थाइपिंग सोसाइटी वॉज ए सॉर्ट ऑफ फ्रेटर्निटी हुज मेंबर्स वेयर नॉट मेरली शॉर्न इनटू ए ब्रदरहुड बट वेयर कंसीडर्ड रियल ब्रदर ऑन द थियोलॉजिकल ग्राउंड दैट गॉड वॉज द फादर ऑफ देम ऑल। थाइपिंग समर्थक एक विचित्र प्रकार की शारीरिक शुद्धता पर जोर देते थे। स्त्री और पुरुषों के लिए अलग हॉस्टल बनाए जाते थे और यौवन संबंधों को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, लेकिन आगे चलकर खुद थाइपिंग नेता हरम और यौन संबंधों को अपनाने लगे। फिर भी उन्होंने चीन की कुछ सामाजिक बुराइयों जैसे अफीम पीना, मदिरा पान और जुआ खेलना आदि को काफी कम कर दिया था।